ओम शांति। तो अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 1978 और टॉपिक जो मिला है वो है पाप और पुण्य की गुह्य गति, माना गहन गति, गहरी गति। तो सबसे पहले तो हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे कि पाप और पुण्य क्या है, फिर उसके बाद जो बाबा ने समझाया। तो लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें पाप क्या है और पुण्य क्या है। पुण्य करना माना कुछ अच्छा कर्म करना, किसी का कुछ दान करना, धर्माओ अर्थ निकालना जैसे लौकिक में करते हैं, सहयोग देना, किसी को मदद करना, तो ये सब है पुण्य कर्म। फिर उसके बाद हम पाप कर्म देखें लौकिक दृष्टि से, तो किसी की निंदा कर देना, हिंसा करना, क्रोध करना, किसी का बुरा चाहना, तो ये सब जो है लौकिक दृष्टि से पाप और पुण्य, ये सब है कर्मणा और वाचा के अंतर्गत आएगा। तो जब हम इसकी परिभाषा लेंगे तो वो लौकिक दृष्टि से आएगी कर्मणा और वाचा के अंतर्गत। बट बाबा ने हमें बहुत सूक्ष्म और घुह्य राज बताया। तो बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने पाप और पुण्य की गति को बड़ा गहरा और सूक्ष्म में समझाया। सबसे पहले अगर हम पुण्य की चर्चा करें तो पुण्य कैसा, सबसे पहले तो हमने बाबा को पहचाना, बाबा का बच्चा बने, वर्षे के अधिकारी बन गए, और वर्षे के अधिकारी बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। सो इट डजंट मीन कि आपका पुण्य ही पुण्य हो गया, आप वन फर्स्ट स्टेप पे आ गए, बट डजंट मीन कि आपका पुण्य हो गया, कि आपके पाप के खाते सारे खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने बोला है, बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या जो हमें बताई है उसको पूरा पूरा फॉलो करना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं तो नियमों का, इस जीवन के जो नियम है हमारे, जो हमें बाबा ने श्रीमत रूपी, जो बाबा ने हमारा हाथ, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, तो उसी प्रमाण चलना, एक्यूरेसी से, एक्यूरेट होके, अलर्टनेस के साथ चलना, अलबेले ना बनना, तो इससे हमारा पुण्य का खाता जो है वो जमा होता है। फिर बाबा ने बोला, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम चैलेंज जो है वो बड़ी जल्दी से लेते हैं कि हम ऐसा बन के दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, बट फिर जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप में आते हैं तो जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो इस महान अंतर के कारण क्या होता है कि हमारी डिससर्विस हो जाती है। तो जो हम पाप, हम जो पुण्य आत्माएं थी वो अभी हम पाप आत्मा बन जाती हैं, भोज वाली आत्माएं बन जाती हैं, क्योंकि और आत्माओं को फिर हम बाबा से वंचित कर देते हैं, क्योंकि हमें जितना ट्रांसफॉर्मेशन हमें होना था वो हुआ नहीं, तो उससे क्या होता है, हम बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो पाप और पुण्य है इसकी जो गुह्य गति है इसको पहचानना है। तो सबसे पहले तो बाबा ने जो समझाया वो मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों से ही हमें पाप कर्म नहीं करने हैं। लौकिक में जैसे अभी हमने अभी बताया कि वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे सिर्फ हम वाचा ऊपर ऊपर का देखते हैं, वाचा और कर्मणा को। तो मनसा वाचा और कर्मणा बाबा ने समझाया। अब मनसा में क्या, तो बाबा की मुरली में है, बाबा ने बोला कि अपनी कमजोरी, स्वयं की कमजोरी अगर मनसा में है, या फिर अपने विकार अगर मनसा में है, तो वो भी पाप का खाता बढ़ा देते हैं। अब स्वयं की कमजोरी कैसी, स्वयं की कमजोरी माना अभी किसी को दिख नहीं रहा है, बट सपोज जैसे उदास है थोड़े से, अंदर से कोई फीलिंग है ना, तो खुशी नहीं है। और बाबा कहते हैं कि जैसे दुख लेने के संस्कार है, देना तो बंद कर दिया बट लेने के संस्कार है, तो ये सब क्या है, ये स्वयं की कमजोरियां हैं। और अपने प्रति विकार, जैसे अपनी ही देह के प्रति आकर्षण हो जाए, या फिर किसी चीज में, किसी वस्तु में मोह हो जाए, तो बाबा बोल रहे कि ये सब जो है, कि या फिर अहंकार आ जाए कि मैं हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, या मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तो उल्टा अहंकार हो जाना, निरहंकारी हूं इसका भी अहंकार आ जाए, तो बाबा ये बोलते हैं कि ये जो है ये सब है, ये सब पाप के खाते में जमा हो जाता है। फिर इसी में ही बाबा ने बोला कि अगर औरों के प्रति, स्वयं के प्रति और स्वयं के विकारों के प्रति तो पाप है, बट अगर औरों के प्रति अगर ऐसा हो जाए तो वो महापाप है। औरों के प्रति अगर विकार की वृत्ति हो जाए हमारे लिए, हमारी औरों के प्रति, तो वो भी क्या है, महापाप है। जैसे औरों के देह के प्रति आकर्षण, या फिर नाम रूप में फंसना किसी के, गुस्सा करना किसी को, या मोह में फंसना, तो बाबा यही बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, ये महापाप है। तो संकल्प में भी आपकी बिल्कुल प्योरिटी चाहिए, तभी पाप जो है वो खत्म होंगे और पुण्य का खाता जमा होगा। फिर वाचा के लिए बाबा ने जो सुनाया, अब जैसे ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो एक चीज हम बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं, नेगेटिविटी छोड़ देते हैं, बट व्यर्थ नहीं छूटता है। तो बाबा यही बोलते हैं कि नेगेटिविटी तो छोड़ दी बट व्यर्थ नहीं छूटा, माना व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सुनाना, ये सब जो है ये नहीं छूटा। तो ये भी क्या है, फिर पाप के खाते में जमा हो जाता है। तो इस बात की भी बहुत अटेंशन रखनी है। जैसे अज्ञानी लोग जो हैं वो ये कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बट बाबा हमें क्या कहते हैं कि व्यर्थ भी ना सुनो, व्यर्थ भी ना देखो, और व्यर्थ भी ना सोचो, व्यर्थ भी ना बोलो। अगर हम कहें कि व्यर्थ ना सुने और कोई सुना रहा है तो क्या करें, तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि उसे भी उसके शुभ भाव में परिवर्तन कर दो। जो भी वो सुना रहा है उसकी भाव और भावना ही बदल दो, तो उसके डबल मीनिंग जैसे एक उसके होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि उसके भाव को अगर परिवर्तन कर देंगे तो फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे, पाप का खाता खत्म होता जाएगा। फिर उसके बाद बाबा बात करते हैं कर्मणा की। अब कर्मणा में कैसे करते हैं, कर्मणा में जैसे हम किसी के व्यवहार, जैसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं किसी के, तो क्या होता है, किसी के प्रति शुभ भावना नहीं रखी, शुभ भावना के बजाय अगर हमने कोई और भावना रखी तो उससे भी क्या होता है कि आपका पाप का खाता जमा हो जाता है। तो किसी के भी प्रति घृणा की या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, क्योंकि हमें निश्चय है, नशा है, हम बाबा के बने हैं, बट उसके साथ साथ हमारे ईर्ष्या या घृणा के संस्कार भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं कि सपोज कोई ऐसी आत्मा आपके सामने आ जाए जो पाप कर्म किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे घृणा करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि घृणा किससे करनी है, पापी से नहीं करनी है, पाप से करनी है। तो हम क्या करते हैं, उस आत्मा से भी घृणा करने लग जाते हैं। तो इसके प्रति भी हमें बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। तो फिर बाबा कहते हैं कि अभी आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, कि मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, दुख देना और दुख लेना दोनों ही नहीं है। तो बाबा के बच्चे तो हम बने हैं, और जब बाबा के बच्चे बने हैं तो प्राप्तियां तो अनगिनत है, बट बाबा क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि अगर बाबा का बन के कोई ऐसा काम किया तो उसका भी 100 गुना दंड है। तो बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा के साथ साथ फिर जब पाप का बोझ चढ़ता है ना, तो वो भी 100 गुना के हिसाब से है। तो इस पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा के आगे हरेक का खाता है बिल्कुल स्पष्ट, बाबा के आगे सभी का खाता बिल्कुल स्पष्ट है, बट हमें अपना, हमारा ही खाता स्पष्ट नहीं है, तो उसे चेक करना है, क्योंकि जब उसे चेक करेंगे तो उसे चेंज करेंगे और फिर बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को डच नहीं करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है कि हम तो बन ही गए हैं या हम तो बन ही रहे हैं, बाबा का बन गए तो संपूर्ण तो हम बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा ने बोला आप फर्स्ट स्टेप पे हो, बट पूरी सीढ़ी अभी आपको चढ़नी है, तो उसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि पाप का खाता अगर अभी जमा करते रहेंगे, अगर अभी तक हमारा पाप का खाता जो है वो खत्म नहीं हुआ, हम और ही जमा, सूक्ष्म में भी पाप करते रहते हैं ना, संकल्पों से पाप होता रहता है, भले ही वाचा और कर्मणा में करना छोड़ दिया हो, तो बाबा कहते हैं अगर यही अभी तक जमा करते रहेंगे तो फिर चुकतू कब करेंगे, तो चुकतू करने का समय भी तो अभी है ना, तो अभी बढ़ाना नहीं है, अलबेलेपन के खाते को बढ़ाना नहीं है, उसे समाप्त कर देना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आपको पुण्य आत्मा भव का, हम बच्चों को पुण्य आत्मा भव का वरदान देते हैं और समर्थी स्वरूप बनने की प्रेरणा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।
1978 की मुरली मिली थी, 13 जनवरी की। तो जो टॉपिक है, जो हेडिंग है मुरली का, वो है इंतजार से पहले इंतजाम करो। तो बाबा ने इसमें, क्योंकि 1978 में बाबा आए थे, तो बाबा ने आते ही बोला कि मैंने 77 में तुम्हें संपूर्ण बनने का लक्ष्य दिया था, तो तुम तो सारे ब्राह्मणों को 78 है तो तुम्हें अब तक तो संपूर्ण बन जाना चाहिए, तो बने क्यों नहीं। तो फिर बाबा बोलते हैं कि तो फिर बाबा ने बोला, क्योंकि एक साल हो गया, तो फिर बाबा बोलता है कि एक्स्ट्रा टाइम जो दिया है वो तुम्हें अपने लिए नहीं दिया है मैंने, वो महादानी बनने के लिए दिया है। मतलब अगर आप खुद ये वाला टाइम भी, जो एक्स्ट्रा टाइम है, वो भी स्व पुरुषार्थ के लिए लगाओगे, तो वो जैसे अमानत में खयानत है। तो उस पर मैंने सोचा था कि हम अपना टाइम कैसे कर, मतलब हम कई बार ऐसे करते हैं ना कि अपना अपना ही करना है, अपना ही योग करना है, और अगर सेवा मिल जाए नुमा, क्योंकि मैंने खुद एक बार किया था ऐसे, बहुत बार किया है कि नुमा शाम के टाइम कोई आता है तो मतलब मुझे इतनी थॉट चलती थी कि ये क्या मतलब है, मतलब इस टाइम पे योग करना है। तो शायद मतलब बाबा ने ये बोला है कि जो टाइम तुम्हारा सेवा के लिए है उस टाइम पे सेवा करनी है, मतलब कर्तव्य पहले है। ऐसा नहीं कि नुमा शाम या अमृत वेले के टाइम मुझे कोई काम मिला है तो मैं ये सोचने लग जाऊं कि नहीं अभी तो मुझे अमृत वेला ही करना है, अभी तो नुमा शाम करना है। तो करना है वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब डिपेंड करता है कि ड्यूटी क्या है। तो बाबा ने यही बोला कि एक्स्ट्रा टाइम महादानी बनने के लिए है। उसके बाद बाबा ने जो है, बाबा ने दीदी जी से बात की है, उसमें बाबा ने बोला है कि जो पुराने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि 8 जो रतन हैं और 108 हैं उसमें नए वाले ना आ जाएं, क्योंकि बाबा ने तो लास्ट टू लास्ट बोला है, तो उनको ये टेंशन है। और जो नए वाले हैं उनको ये लगता है कि पुराने वाले तो हम तो कितनी लेट आए हैं, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि मैं तो कितनी लेट आई हूँ। तो फिर बाबा दीदी जी को बोलते हैं कि 8 रत्नों की निशानियां बताते हैं। कि बाबा कहते हैं पहले भी तुम्हारा यही क्वेश्चन था कि मैं कौन, अभी भी तुम्हें यही क्वेश्चन है कि मैं कौन बनूंगा। तो फिर बाबा उनको बोलते हैं कि 8 रत्नों की निशानियां क्या हैं, जिनकी 8 पावर्स जो हैं वो अभी दिखाई देंगी प्रैक्टिकलिटी में, मतलब अभी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो 8 की 8 शक्तियां हैं वो अभी यूज करेंगे। तो वो 8 रत्नों की निशानियां, माना संगम युग पे ही वो यूज करेंगे वो सारी निशानियां। फिर उसके बाद जो है, बाबा ने बोला है कि तुम माया को जो है चांस देते हो तो वो तुम्हारी चांसलर बन जाती है। जैसे चांसलर यूनिवर्सिटीज के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं सबको। तो चांसलर, तो बाबा ने बोला कि माया चांसलर बन गई तो वो अपने अकॉर्डिंगली चलाएगी। तो तुम तो यहाँ पे टाइटल थोड़ा फिट बैठता है, बाबा ने पूरा एक्सप्लेन तो नहीं किया। तो फिर बाबा ने बोला कि इंतजार से पहले इंतजाम करो, ये सोचने की बजाय कि कंप्लेन करने की बजाय कि हम कर लेंगे, या तुम्हारे जो क्यों की क्यों लगती है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसकी बजाय मना इंतजार करने की बजाय कि वो कैसे कब मेरे ये वाला संस्कार ठीक होगा या मैं कब फ्यूचर में वो बनूंगा, उस इंतजार के से पहले इंतजाम करो। तो इंतजाम जो बाबा ने बताया कि 3 तरह की आत्माएं हैं। एक बाबा ने बोला भिखारियों की को दान दो, जो भिखारी आत्मा है उसको दान दो। एक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, एक्सप्लेन नहीं किया है, एक ही चीज एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 3rd तरह की आत्मा है भक्तों को, जो भक्ति का फल है वो कैसे देना है, उनको बाप से मिलन करवा के, तो बाबा से उनको बाबा का परिचय देके और बाबा से मिलन करवा के उनकी भक्ति का उनको फल देना है। तो बाबा कहते ये इंतजाम करो, इन 3 तरह की आत्माओं को तुम उसमें सेवा करने में अपना टाइम लगाओ, बजाय इसके इंतजार के कि मेरा ये क्वेश्चन कब पूरा होगा या मैं ये कैसे ठीक होगा। और हमने खुद भी फील किया है कि जब हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब मैंने फील किया है, तो मतलब मुझे इतनी टेंशन हो जाती है जब अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, तो मुझे सारा दिन ये रहता है अब तो मैं गई, मतलब अब तो शाम तक नुमा, क्योंकि जब अमृत वेला होता है और जब नहीं होता तो स्थिति में बहुत डिफरेंस फील होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे मैं पुरानी वाला, मतलब पुराना वो बन जाता है अज्ञानी काल वाला। आज थोड़ा सा ठीक था, ज़्यादा नहीं। तो फिर हाँ, मतलब पूरा वो, मतलब मैं कोई ऐसे, फिर मैं बाबा को बोलती हूँ कि फिर मैं तो अपनी ड्यूटी 1 घंटा तो बैठूंगी, बाकी तू देख ले। तो फिर तो उसमें क्या है, तो बाबा ने बोला है कि मतलब जैसे मैं खुद टेंशन ले लेती हूँ कि अब तो नुमा शाम कब आएगा, कब वो पावर मिलेगी, तो वैसे ही बाबा ने बोला कि तुम इंतजार करते रहते हो, उसकी बजाय इंतजाम करो, माना खुद को बिजी करो सेवा में या किसी और, मुरली पढ़ लो या कुछ और पढ़ लो, मतलब ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तो उसके बाद उस उसके बाद बाबा ने समीप रत्नों की निशानी बताई है। समीप रतन बाबा ने बोला वो मेरे ज्यादा क्लोज हैं, जो दिखता नहीं है उसको देखते हैं, माना दिखता क्या नहीं है, आत्मा नहीं दिखती और वो आत्मा ही देखते हैं हर एक में, तो वो लोग मेरे ज्यादा क्लोज हैं। हम तो जो दिखता है वो देखते हैं, लेकिन समीप रतन बाबा के वो हैं जो दिखाई नहीं देता उसको देखते हैं। उसके बाद बाबा ने मधुबन निवासियों की बात की है कि जो मधुबन में रहते हैं वो एक्टर्स हैं, उनको क्योंकि अब जैसे हम मूवी देखते हैं तो एक्टर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन होती है, तो बाबा बोलते हैं तुम भी एक तरह से एक्टर्स ही हो, तुम्हें जो बाकी मधुबन से दूर सब रहते हैं वो लोग तुम्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें अपने एक एक एक्शन पे पूरा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने महाराष्ट्र के ग्रुप से बात की, उसमें बाबा ने बोला कि कर्म योगी और सहज राजयोगी का क्या मतलब है, तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में भी जो लवर्स होते हैं, जैसे अगर किसी को प्यार होता है तो उसको उसकी चाल चलन से पता लग जाता है कि इसको किसी ये किसी के प्यार में लवलीन है, ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो उसी तरह तुम अगर कर्म योगी हो मतलब तुम्हें पता दूसरों को देख तुम्हारे एक एक एक्शन से पता लगना चाहिए कि तुम्हें बाबा के साथ तुम्हारा संबंध भी है और बाबा से तुम्हारा प्यार भी बहुत है, वो तुम्हारे चाल ढाल मतलब बोलने से हर चीज से पता लगना चाहिए, तभी तुम्हारा कर्मयोगी है, नहीं तो वो कर्मयोगी नहीं बोला जाएगा। फिर लास्ट में एक इसमें लाइन आई थी, मतलब वो मुझे अच्छी लगी, बाबा ने बोला कि हमें पुरानी चीजें संभालनी तो अच्छी लगती है, लेकिन बाबा बोल रहा है कि लेकिन उसको यूज करना अच्छा नहीं होता, मतलब तुम लोगों को पुरानी चीजों को संभालना अच्छा लगता है लेकिन पुरानी चीजों को यूज करना सही नहीं होता। तो उसमें चार पांच पॉइंट्स निकाले थे कि पुरानी कौन कौन सी चीजें हमें संभालनी अच्छी लगती हैं लेकिन एक्चुअल में वो यूज करनी अच्छी नहीं होती। तो जैसे पुराने संस्कार हैं, मतलब जैसे ब्लेम गेम है कि पहले क्या करते थे इसकी वजह से मैं दुखी हूं इसकी वजह से, तो बाबा तो ये पुरानी चीज है और अगर अभी भी सपोज मैं ऐसे कर रही हूं कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है, अब जैसे कल ही मुझे थॉट आया था, बहुत सारी आई थी कि जैसे सेवाधारियों जैसे 15 माताएं कमरे में रहती हैं, तो मुझे होता है 9:30 तक सोना है ताकि पावरफुल अमृत फैलाओ, तो सब लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे तो मेरे को इतना ज्यादा आ रहा था कि इनको पता नहीं चलता है कि 9:30 तक सोना है, तो नहीं कहा कुछ। तो फिर मना हमें पुरानी नेचर संभालनी अच्छी लगती है लेकिन बाबा बोलता है तुम संभालो भले लेकिन वो यूज करनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैंने संभाली लेकिन यूज करनी अच्छी कैसे नहीं हुई, वो सोच के मेरी अपनी स्थिति खराब हुई और फिर मैंने नेगेटिव मतलब वाइब्रेशन क्रिएट की, और पुरानी जैसे हमारी पुरानी चीज स्मृतियां भी कह सकते हैं, ये बाबा ने नहीं बताया है, ये मतलब खुद से सोचा था, पुरानी स्मृतियां कह सकते हैं जो संभालनी अच्छी लगती हैं कि हमें कुछ अच्छा मोमेंट हुआ है कि वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो अच्छा था इट मींस एट प्रेजेंट वो अच्छा नहीं है, तो माना संभालना मुझे अच्छा लगा लेकिन यूज करना अच्छा नहीं लगा, यूज क्यों नहीं अच्छा लगा क्योंकि एट प्रेजेंट तो मैं दुखी हूं, तभी मैं ऐसे बोल रही हूं मैं कभी खुश थी। और जो लास्ट में इसमें बाबा ने एक और चीज बोली कि जब माया आती है, जब माया चांसलर बनती है, तो एक चाबी बाबा ने बोली है कि बाबा अक्षर, तो लेकिन बाबा ने बोला कि बाबा अक्षर का भी असली मतलब या असली यूज तुम तभी कर सकते हो लेकिन जब तुम एक सेकंड में चेंज हो जाओ। मान लो कोई सिचुएशन आई है और मैंने बोला बाबा बाबा या मतलब बाबा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं एक सेकंड में मेरी स्थिति ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब मैंने बाबा वर्ड को अच्छे से यूज नहीं किया है, मतलब अगर मैं मेरी स्थिति एक सेकंड में चेंज हो जाती है तभी मैंने बाबा अक्षर की चाबी को अच्छे से यूज किया है। और ये मैंने फील किया है कि जब तो बहुत अच्छा अमृत वेला होता है, बहुत अच्छा योग की स्थिति है, तब दिन में कोई परिस्थिति आती है तो फिर मैं बाबा को याद करूं तो वो हो जाती है बहुत जल्दी ठीक, लेकिन अगर अमृत वेला सही नहीं है तो कितना भी बाबा बोलते रहो वो सही नहीं लगता है, तो वो स्थिति को काफी टाइम लग जाता है उसको चेंज होने में। तो बाबा ने बोला कि बाबा अक्षर अगर एक सेकंड में चेंज होते हो ना तभी तुमने बाबा अक्षर को सही यूज किया है। और फिर लास्ट में हाँ बाबा ने बोला कि जो कर्म योगी है उसका हर संकल्प जो हर थॉट भी है या कर्म तो है ही है, हर थॉट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को फील हो। जैसे अभी लोग हमें बोलते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, मतलब सभी बीकेस को बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं फायदा तब है जब वो बोले कि इन्हें इनसे भगवान की वाइब्रेशन आ रही है। माना कि ये रूह, बाबा रूहानी है, तो हम अगर उससे जुड़े हुए हैं, अगर वो वाइब्रेशन आए, मतलब पॉजिटिविटी से भी एलिवेटेड जो है, तब उसका बेनिफिट है, तब वो कर्म योगी है, अदरवाइज वो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। बाबा ने कल होमवर्क दिया था 1977 का 25 जून पवित्रता का फाउंडेशन, जिसमें बाबा ने बताया, बाबा ने उसमें यथा योग्य और यथा शक्ति वाले बच्चों को देखा कि कैसे पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत किया है। तो बाबा ने कहा शरीर से तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने उसमें 7 पॉइंट्स बताए थे कि कैसे बच्चों को अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को और डेप्थ चेक करके परिवर्तन करना है, जिसमें बाबा ने कहा था जितना जो ऑनेस्ट होगा उतना होलीएस्ट होगा, क्योंकि जो ऑनेस्ट होगा वो सबसे पहले बाप के साथ सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वही दिल तख्त पर बैठकर भविष्य में राज तख्त पर आएगा। तो यहां पर अपने आप को चेक करना था कि वाकई में हम बाबा के साथ सच्चा हैं। तो बाबा के साथ सच्चा माना हर संबंध में मैं बाबा को साथ रख करके कितना चलता हूं। कहीं कोई संबंध में कोई देहदारी की स्मृति या कोई सहयोगी साथी की स्मृति तो नहीं आती, अगर आ रही तो इसका अर्थ है कि मैं बाप के साथ सच्चा नहीं हूं, क्योंकि हजारों भुजाओं से शक्तिशाली वो हमारा बाप, वो हर संबंध का साथ निभाने के लिए एवर रेडी है। लेकिन हम बच्चे उस समय स्मृति से विस्मृति हो जाते हैं और दैहिक संबंधों से सहयोग ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा था ऑनेस्ट कहा जाता है जो बाप के जो भी डायरेक्शन मिले हैं उनको उसी रीति यूज करें, ना उसमें मनमत मिक्स करें ना परमत मिक्स करें, क्योंकि जब हम बाबा के डायरेक्शन में कुछ मिक्स कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाती है, और जितना हमें सफलता मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलता है। तो बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए हमें खुशी तो हो जाती है, लेकिन जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो इसमें भी हमें चेक करना है कि बाबा की किसी श्रीमत में हम मिक्स तो नहीं करते हैं। जैसे बाबा अक्सर कहता है कि जैसे सिस्टर ने बताया नुमा साम योग का और अमृत वेला का, तो बाबा का टाइम तो 2 बजे से शुरू हो जाता है, तो हम 3:30-4 उसके बाद हम उठने की टाइम तो फिक्स कर रखे हैं कि 4:45 के बाद भक्तों की लाइन हो जाती, उठ जाना चाहिए, लेकिन उठने का भी टाइम फिक्स करेंगे तो प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हें मिला है, क्योंकि हम बच्चों से हर कोई मिलता है तो उन्हें शक्ति की अनुभूति तो होती है, लेकिन बाबा कहते इसे तुम विश्व अर्थ यूज कर रहे हो या सिर्फ अपने अर्थ यूज कर रहे हो, अगर अपने अर्थ यूज कर रहे हो तो फिर अमानत में खयानत होगी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं दिया है, स्व कल्याणकारी नहीं विश्व कल्याणकारी भी है। तो हमें अपने हर सेकेंड हर संकल्पों में देखना है कि वाकई में ये जो मैं संकल्प की रचना कर रही हूं क्या इससे विश्व का कल्याण हो सकता है, क्या ये मैं संकल्प क्रिएट कर रही हूं तो ये क्या बाबा के सेवा में काम आ सकता है, इससे हम व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से बहुत सहज रीति से बच सकते हैं। फिर बाबा ने बताया कि जो ऑनेस्ट और होलीएस्ट बच्चे हैं वो सर्व के प्रति हमेशा शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, ऐसा नहीं कि शब्दों से कि आपका अच्छा हो, लेकिन दिल से, जैसे अपने लिए हम मेहनत करते हैं अपने किसी कमी कमजोरी को दूर करने के लिए, वैसे अगर किसी आत्मा की कमी कमजोरी से बहुत परेशान कर रही है तो हमें भी अपने शुभ वाइब्रेशन विशेष योग में उसको दान देना है। तो ये हो गया सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना अंदर से। फिर बाबा ने कहा कि सदा संकल्प और बोल में निमित्त और निर्माण हो, क्योंकि कई बार हम कहते हैं बाबा तो करा रहा है, लेकिन जब बात आती अपनी तो कहते नहीं मैंने किया है, तो वो अंश मात्र भी अंदर से वो मैपन नहीं आना है, निमित्त और निर्माणपन, इस पॉइंट को बहुत गहराई से चेक करना है। जैसे कई बार सेंटरों में भी सेवा होती है तो कहते किसने बनाया भोग दीदी, तो हम सब कहते बाबा ने बनाया, लेकिन जब कहते बहुत टेस्टी है तो कहते अरे मैंने तो बनाया था, तो ये छोटी सी बात है आती है तो होती है। और सेंटर बहुत अच्छा है दीदी इतना सेट करके रखते हो, नहीं नहीं बाबा रखता है, अच्छा दीदी यहाँ गंदा है, अरे मैंने सुबह तो साफ की थी अभी कैसे गंदा हो गया। तो ये ना निमित्त और निर्माण ना मिक्स हो जाता है, अगर बड़ी दीदी कुछ समझानी दे दी फिर उस समय बाबा को न देकर अपने आप को ले लेते हैं, फिर मुन जाते हैं इतना के बाद भी इतना के बाद भी इतना, तो वो निमित्त निर्माण में मिक्सिंग हो जाती है। और वहीं पर बाबा भी है मनमत और परमत मिक्स कर लेते हैं, बाबा की श्रीमत को हम भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ऑनेस्ट माना हर कदम में समर्थ होगा, हम कोई भी संकल्प करते हैं तो हम बाबा कहते हैं तुम सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हम थोड़ा हाँ ना वाली स्टेज हो जाती है, तो बाबा कहते आप विश्व कल्याणकारी आत्मा, आपके एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकते, तो इतनी समर्था के साथ उसको हमें करना है, अंदर से वो विश्वास भी अंदर से लाना है, क्योंकि जब हम ऑनेस्ट और होलीएस्ट बच्चे हैं तो हमारे एक भी संकल्प व्यर्थ कैसे जा सकते हैं। उस पे बाबा ने समझाया, फिर बाबा ने कहा जो जब हम कोई चीज करने का एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें बाबा का फुल फोर्स से मदद मिलता है, जब बाबा की मदद मिल रही है तो फिर तो सफलता का हमारे गले का हार है। जैसे मैं छोटा सा बात बताऊं भैया, अभी मैं जब गुड़गांव से दिल्ली आ रही थी तो टिकट का भी समर वेकेशन के छुट्टी के टिकट नहीं मिल रही है, तो एक मिनिस्टर भाई ने लेटर दिया आप इसको दिखाकर चले जाना मिल जाएगा। वो मिनिस्टर भाई ने कहा दीदी नहीं मिलेगा टिकट, कोई बात नहीं अब कल परसों जाना। मैंने कहा कल क्यों, आज ही जाना है। तो फिर आराम से स्टेशन पे आ गई और उसके बाद ट्रेन पे चढ़ गई, सेकंड एसी का वेटिंग था, मैं थर्ड पे रुक गई। मैंने कहा बाबा अब मैं नहीं जा सकती, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, यहीं रुक जाती हूँ। उसका टीटी आया कहता आपके पास तो टिकट नहीं है, तो मैंने कहा देखो मैं ऑनेस्ट बच्चा हूँ बाबा का, आप अगर बोलोगे तो मैं उतर जाऊंगी अभी, या तो फिर आप मेरा टिकट बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1900 रुपया का टिकट बनाया, बोला मैं आपको सीट नहीं दूंगा। मैंने कहा आपका इलाका अब जैसे करो भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं सीट ढूंढता हूँ। फिर बहुत सारे ज्ञानी अज्ञानी, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मदद के लिए कहीं आह्वान करने की जरूरत नहीं है, बाबा हजार बजे पता नहीं कितने मददगार खड़े किए हुए। फिर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं आप अंदर बैठ जाओ सिस्टर अंदर। मैंने कहा नहीं, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि कई लोग तो अच्छा कह रहे हैं, कई लोग तो ये भी देख रहे हैं देखो टिकट नहीं और कैसे कर रहे हैं। फिर मैं वहीं रुक गई, उसके बाद जस्ट बगल में ही एक सिस्टर आनी थी वो नहीं आई, उसने टिकट भी कैंसिल नहीं कराया। और उसने कहा सिस्टर आप ऐसा करो आप मेरी टिकट ले लो और जो पैसा टीटी को देना आप इसको दे दो। फिर मुझे लगा ये भी लॉफुल नहीं है, ये तो गलत काम हो गया। तो मैंने कहा ठीक है टीटी को आने दो। फिर उसको बताया भाई जी इनके पास ऐसा है तो ले लूं। उन्होंने कहा ठीक है भले ले लो, वो दे दिया। दूसरा एक आरसी वाला, उसको क्यों दिया व्हाइट ड्रेस वाली को, मुझे टिकट देना था उसको क्यों दिया। उसने कहा कुछ तो पुण्य का कर्म कर लूं, तो उसने क्या किया रसीद से मेरा टिकट बना दिया और पैसे ले लिए, मनपसंद सीट दे दिया। मैंने कहा बाबा से कि बाबा मैं सेकंड एसी में जाने वाली थी, मैं थर्ड के पास रुके और आपने मुझे वहीं रोका जहां पे मेरे से ऑलरेडी एक सीट रखी हुई थी, और उस बहन की कैंसिल क्यों नहीं कराएं क्योंकि मैं बहन जाने वाली थी। तो बाबा की महिमा, बाबा की मदद असंभव भी संभव कर देता है, इसलिए कहते जहां अपने संकल्प की असमर्था का तो बाबा फुल फोर्स से मदद भी करता है। फिर बाबा ने समझाया कि अगर बाप के आगे स्वयं को, ये सबसे अच्छी पॉइंट लगी जो सेवन्थ पॉइंट में थी, कि हम बाबा को कहते हैं कि बाबा जो है जैसा हम सबके सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन बच्चे जो है जैसे हैं वो बाप के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। हम कहते हैं ना बाबा को सब पता है, लेकिन बाबा कहते हैं जब कुछ गलतियां होती है तो हम उसको कितना बटर लगा करके किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़े टाइम के लिए निमित्त और जो भी सहयोगी वो सोचते चलो इसकी गलती नहीं थी, लेकिन लंबे टाइम का जीत आपको छोटे टाइम के जीत में क्या करता है, चेंज हो जाता है। आपको लंबे टाइम का हार मिल जाता है, क्योंकि छोटी सी चीज है आप अपने आप को सही तो बता दिए, लेकिन वह आत्मा भी देखते हैं, निमित आत्मा है जो जिनके सामने आप अपनी बातें रखते हो, वह भी सोचते इनके पास इतनी सहन शक्ति नहीं है, इसलिए उमंग उस आपका कम ना हो, इसलिए हाजी हाजी करके हमें आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहां अपने आपको चेक करना है कि वाकई मेरी कितनी परसेंटेज मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी बातें आती है ऐसे नहीं आती है, कुछ तो धुआं हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। तो वहां चेक करके हमें लंबे टाइम के जीत पर नजर रखना है, कहते दूरदृष्टि पक्का इरादा। तो उस रीति से हमें अपनी अंदर की जो हूं जैसा हूं बाबा के सामने, कम से कम एक के सामने तो ऑनेस्ट रहे, बाकी सबके सामने जो भी है वो तो बहुत लंबा रिश्तेदार है ना, लेकिन एक के सामने अगर ऑनेस्ट रहते हैं तो उसकी ऑनेस्टी क्या कि हम सबके सामने अच्छा कर देगी। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं कि सम्मुख तो सुनाते हैं बाबा मैं ऐसा हूं, लेकिन जब दूसरे कहते तो मानते नहीं, तो यहां चेकिंग में कमी आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो अच्छे से और चेक करके चेंज करो। फिर बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की, तो ये बातें बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम बाबा के सामने अगर ऑनेस्टी से अपने को रखते हैं तो बाबा हमें मदद करता है और उन कमी कमजोरियों से भी छुड़ा देता है। फिर महारथियों से भी मुलाकात की बाबा ने, बाबा ने उसमें बोला है कि 1977 में कि बच्चे कहते बाबा इतने टाइम तक तो पवित्र रह गए, आपने तो 77 तक कहा था, अब इससे आगे तो बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि मंजिल इतनी ऊंची है, कोई एक दो साल के लिए हमको लक्ष्मण तो नहीं बनना है, लंबे टाइम के लिए विश्व राज्य लेना है। तो ये पवित्रता जब हमारे जीवन का संस्कार बन जाएगा और जहां स्नेह होता है वहां कोई भी चीज मानने में मुश्किल नहीं होती है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, महारथियों से मुलाकात की और बाबा ने समझाया उसमें कि कहते चेकिंग करो, बुद्धि द्वारा चेक करो, क्योंकि जब हम ऊपर ऊपर चेक करते हैं ऐसे ही रात को जब गुड नाइट करते हैं तो क्या कहते बाबा सब ओके ओके था, लेकिन बहुत कम ओके था, बहुत सारा अन ओके था, है ना, क्योंकि संकल्पों की, हमारी कर्मेंद्रियों की, सबकी दरबार लगाने में तो कम से कम एटलीस्ट मैं जब करती हूँ तो मुझे तो घंटा भी कम लगता है, क्योंकि पूरा टाइम टेलीकास्ट होते रहता है, देखते रहती हूँ क्या क्या गलतियां हुई, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो रात में हम जल्दी से क्या कर देते, ओके बाबा सब ओके ओके था, तो इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि से चेकिंग करनी है। फिर बाप समान फरिश्ता बनना है, हर एक का मंजिल है क्या, फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता कब बनेंगे, कहते जिससे स्नेह होता है ना उसके हर एक्शन की कॉपी करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आपको सच में मेरे से स्नेह है ना तो मेरी एक एक चीज की कॉपी करो, तो आप क्या बन जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे। स्नेह भी है लेकिन इस देह रूपी शरीर से ना कुछ जास्ती प्यार है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बाबा से प्यार जास्ता है जास्ती है शरीर से, तो दोनों लगते जैसे इक्वल है, इससे भी कम प्यार नहीं है। कई बार कितना चीज बाबा के हम श्रीमत का पालन नहीं कर पाते क्योंकि उसमें शरीर खड़ा हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसको चेक करके फिर चेंज करना है और बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा कभी कभी जीत होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी हार होती है तो हम हिलने लगते। तो बाबा ने कहा ये हलचल वाली स्टेज को भी खत्म करना है क्योंकि फरिश्ता माना स्टेबल रहे। फिर बाबा ने बताया कि जैसे महारथियों की शुरू में जब हम बाबा के बने थे तो कितना उमंग था हर एक को बाबा का बनाने का। तो बाबा ने कहा उसको भी चेक करके अब वही उमंग उस साल लाओ, क्यों कम हो गया है। हर एक को लगता था कि इनको भी पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना है, यह भी पवित्रता की सीढ़ी में आगे बढ़े, लेकिन अब चलते चलते क्या हो गया, हम स्लो हो गए। तो बाबा ने कहा वही चीज फिर से लाओ और हर एक को बाबा का पक्का बच्चा बनाने में सहयोग दो। फिर बाबा ने कहा ड्रामा है ना, ड्रामा। तो कहते ड्रॉ करो अपने हर एक कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों का ड्रॉ खींचो तब जाकर आपकी महिमा होगी, है ना। तो ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना, ड्रामा में अपना पार्ट को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है क्योंकि आगे आगे अच्छी मूवी मिलेगी। वो सत्युग में अच्छा रोल कब मिलेगा, जब यहां पर रिहर्सल अच्छा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा, उसका हिंदी वर्ड क्या होता है, नाटक। तो नाटक में भी नाटक ना करो, ड्रामा कह करके, है ना, उसमें अपने पार्ट को अच्छा करना है। तो उसमें टोटली जो कल बाबा भैया ने बताया अंतर्मुखता की बात, उसको देखेंगे तो ड्रामा में अपने आप को सेल्फ रियलाइज करके अपने पार्ट को चेंज करेंगे। फिर बाबा को बार बार इतना हमें कहना नहीं पड़ेगा, इशारे से हम देवता बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मैंने इससे पहले कोई कविता नहीं लिखी, ये मेरी फर्स्ट कविता है। जब मैं शांति उनमें था तो सचिन भाई जी, मैंने आपका क्लास सुना था जॉनी जॉनी यस पप्पा के ऊपर। आपने बताया था कि ना लिखते ना भी लिखते आए तो अभी भी दर रोज एक कविता लिखना। शरीर सही जो भी देखते होगा तो एक दिन है विनाश, लौटना है घर वापस, करो अब तो बनो पावरफुल और जाओ इस पुरानी दुनिया को भूल। कौन से शब्दों में देता है महज वो मैसेज अब तो बता दो, कौन सा मार्ग है सहज बताओ, व्यभिचारी भक्ति में बैठे हो या अभिचारी भक्ति में। बाप तो है भगवान, भगवान तो है पावन, फिर भी क्यों जाते हो उस विकारों के पास जिसका नाम है रावण। घर जाना है ये आत्मा है जानती, पर वापस घर जाना है ये दुनिया नहीं मानती। अब हद का वर्षा पूरा हुआ, बाप है तुम पर बरसा, भगवान तो आया है तुमको। तुम तो आत्मा, बाप है परमात्मा, उनको कहा जाता है कालों के काल, और क्यों ना कहा जाए वो है ही कालों के काल, पर एक दुख की बात आने में लगा दिए कितने साल। संग में जाओ जो हो इतना पावन, प्रवेश ना कर पाए कोई भी रावण। ये जीवन है सारथी, इसलिए बाप बना है हमारा जीवन सारथी। वृक्षपति तो ऊपर ही करता है निवास, तो बाप भी देते हैं तुमको सकाश। बिगर फाउंडेशन का बाकी सारा जाड़ है खड़ा, थोड़ा तो बाप को याद कर लो, इतना स्वर्ग का वर्षा है बड़ा। हम तो है मूल वतन निवासी, पर निमित्त एक जन्म है मेरा, पर बाप सदा कहते 84 जन्म है लेना तो पार हो जाएगा पूरा फेरा। हम तो नहीं बिछड़ते सतयुग में, पहले आते सतयुग की आत्माएं पार्ट बचाती, बाकी सारे आत्माएं कहाँ चली जाती। 1250 वर्ग का है युग, 84 जन्मों की है ये कहानी, सीढ़ी से उतरते पहुंचे संगम युग, अब जाना है वापस सतयुग। भल है तो पुरुष, पर मेजोरिटी तो माता की ही है, इसलिए बाबा ने माताओं की महिमा है गाई, देखो ये शिव शक्तियां है आई। अपार सुखों की दुनिया में चलते संगम युग खड़ा। सोचो जरा स्वर है कितना बड़ा, पर वेस्ट करते टाइम सोचते वक्त है पड़ा, इसलिए भर जाता है पाप का घड़ा। आत्मा तो है पुरुष और पुरुष तो है सारथी, तो बना दिया हर बाप को आत्मा है पुरुष और पुरुष तो है सारथी, तो बना दिया हर एक को दिव्य पुरुषार्थी। सचिन भाई जी, आपके लिए मैंने चार लाइन लिखी है, वो आपको सुना दूं। साकार मुरली तो लिखी है, मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं, मैं लाइंस बड़े अच्छे लिखता हूं, ये तो मैंने बहुत बार लिखी है। आपकी याद में हम व्यस्त रहते इतने कि पता ही नहीं चलता लोग हमारे सामने है कितने। वही वही, आपकी याद में हम व्यस्त रहते इतने कि पता ही नहीं चलता लोग हमारे सामने है कितने। कहानी तो जरूर सुनेंगे जितना आप हमें सुनाएंगे, पता नहीं कहानी सुना के कितना योगी बनाएंगे। ओम शांति। मेरा नाम ओमकार है, मैं महाराष्ट्र के अकोट से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं ज्ञान में तो बहुत मतलब सिंपल है, बहुत जनों के अनुभव होंगे। मैं शिवानी बहन का प्रोग्राम देखता था, तो मैं आपको मैं सबको पता है कि शिवानी बहन का प्रोग्राम देखते सब ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन मैं तो मेरा पापा का अनुभव बताऊँगा। जो मेरे पापा जो थे उनको मतलब बहुत ये थे, व्यसन थे, तो उन्होंने एडिक्शन से कैसे ये किया। जब हमारे मंजू दीदी जो थे सेकंड दीदी, छोटी दीदी, उन्होंने पापा का कोर्स किया तो मुझे जाना था मधुबन। मुझे बहुत मतलब ये थी कि मधुबन जाना ही है। हमारे माताएं बोल रही थी कि तू कुछ जा नहीं पाएगा दसवीं के तब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। तो उन्होंने बोला कि बस अब तू 2-3 महीने रहेगा और छोड़ देगा जब जैसे तेरी स्कूल चालू हो जाएगी। मैंने कहा अब तो इनको मधुबन जाके दिखाना ही है। ये अपना जीवन ध्येय रखा कि अपने मुझे मधुबन जाना ही है। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने बताया कि तू अच्छे मार्क्स लाके दिखा। पहले तो मैं बहुत कम था, 70-80 से ऊपर कभी आता ही नहीं था। अब कंडीशन ऐसी हो गई कि 90 से नीचे जाता ही नहीं। तो मेरे जो पापा है उनकी एक आदत थी कि वो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। खाना मतलब ऐसा अपना घर का खाना नहीं, जो भी भंडारे टोली वगैरह रहती पापा ही बनाते हैं। अभी भी सेंटर में जो भी टोली रहती है पापा ही बनाते हैं। और अभी पापा शांतिवन में आए हैं, हमारे जो सेंटर है उससे 30 जना है। तो उसमें पापा ने क्या किया, कोर्स तो कर लिया लेकिन उनको तो कुछ समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या रहती। वो सोचते थे कि एक लाल कलर का प्रकाश होगा जो हमारे मन में बैठता है, बस इतना समझ में आया। तो उनको तो एडिक्शन था, तो उन्होंने क्या किया, जो भी रहते इतनी पुड़िया लेके रखी थी और वो ट्रेन में मतलब उन्होंने खाना चालू कर दिया। मुझे तो कुछ पता नहीं, तब मैं छोटा था। तो दीदी ने मंजू दीदी को बताया, बोली कौन से आदमी को लाया, तो बोले पुड़िया खा रहा है। तो फिर मंजू दीदी ने बोला, मंजू दीदी कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे पापा ने मतलब सोचा कि अब तो पुड़िया खत्म हो गई, अपने को शांतिवन में जाके और लानी पड़ेगी। उनको ये नहीं पता था कि इसको शांतिवन कहते हैं। तो मतलब हम जब नीचे उतरे तो उन्होंने बाहर घूमे, उन्होंने देखा है या कुछ, अपने को टेंशन का काम नहीं। तो जैसे ही उस मतलब 8 दिनों के इसमें उन्होंने अपनी लाइफ पूरी बदल दी, इतनी बदल दी कि मतलब आज अगर मतलब उनको पूछा जाए कि आपको कोई व्यसन है तो नहीं बोलेंगे, कौन सा भी व्यसन है। उनको तो बहुत सारे थे, वो मतलब नॉनवेज खाते थे, पुड़िया खाते थे, शराब पीते थे, तो उनको मतलब बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बहुत ही हो गई। एक बार तो उन्होंने मेरे लिए नॉनवेज लाया था। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस दिन मतलब उस जो रोटी थी उसको फेंक दिया कि बोले मुझे खाना ही नहीं है, आपको लाना होगा तो मैं वेज ही खाऊंगा वरना खाऊंगा ही नहीं। तो ऐसा मेरा अच्छा अनुभव है। और जो मेरी सिस्टर थी वो हैंडी कैप्चर थी, तो वो अभी 2018 में दिवाली से पहले गुजर गई। तो वो भी उसने हमें ज्ञान में लाया, वो दररोज शिवानी बहन के प्रोग्राम दिखा करती थी। अगर दूसरा प्रोग्राम मतलब लगाए तो उसको मतलब पता नहीं बहुत रोना शुरू कर देती थी। तो दीदी ने उनको बताया कि बोले ये पुरानी आत्माएं हैं जो भी लोगों को ज्ञान में लाती है और जल्दी ज्ञान में आ जाती है, वो सारी पुरानी आत्माएं होती है। तो दीदी ने बताया, बोले टेंशन मत लो, ये 10 साल बाद आपको मधुबन में मिलेगी और मधुबन में आने के बाद में सेंटर पे मिलेगी। तो ऐसा मेरी सिस्टर के लिए हम 2 मिनट योग करेंगे, ना कि मेरी सिस्टर के लिए, लेकिन वो एक बाबा की बहुत अच्छी बच्ची थी, उसके लिए 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति।